कांग्रेस का लंबा शासन, जिसके बाद दस्तक भाजपा की। न सिर्फ दस्तक बल्कि विशाल जन समर्थन के साथ आई भाजपा, जिसकी शान शौकत शासन में आज तक कायम है बावजूद कई विवाद और घपले घोटालों के।
हम हाजिर हैं न्यूज एंड व्यूज की एक और पेशकश एनवी रेडियो के साथ। नमस्कार, मैं हूं दिनेश।
और मैं हूं नीना। क्या सोचते हैं आप? कार्यक्रम के पिछले एपिसोड में हमने बात शुरू की थी दिग्गी राजा की हार से। हार के बाद
प्रदेश में शंखनाद हुआ भाजपा युग का और मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुई प्रदेश की पहली महिला साध्वी उमा भारती।
बीजेपी युग में चली रिले रेस, यानी सत्ता की कमान उमा भारती से शुरू होकर बाबूलाल गौर से होते हुए शिवराज के हाथों तक कैसे पहुंची, इसके पीछे दिलचस्प कहानियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साध्वी उमा दीदी के राजपाट से।
दीपक तिवारी जी की किताब राजनीति नामा भाजपा युग, इनसे बात करेंगी हमारी सहयोगी सुषमा कलंबे।
हेलो,
नमस्कार दीपक जी, मैं सुषमा बात कर रही हूँ न्यूज एंड न्यूज से।
जी सुषमा जी।
दीपक जी, आपने अपनी पुस्तक राजनीति नामा में उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी तब की उमा भारती और आज जब केंद्र सरकार में मंत्री है तो उस उमा भारती में क्या अंतर है?
और देखिए, तब की उमा भारती और अभी की उमा भारती में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय जब उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी तो मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा मैंडेट लेकर वो आई थी। 173 के लगभग सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, और भाजपा की जो सरकार बनी थी वो दिग्विजय सिंह को हटा के सरकार बनी थी। उसके पहले तक बड़ा मुश्किल होता था दिग्विजय सिंह को हटा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए। 10 सालों की सरकार के दौरान 1998 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, पर 2003 में जब उमा भारती आई तो उन्होंने दिग्विजय सिंह को परास्त किया, तो लगभग एक असंभव जैसा कार्य उस समय माना जाता था। और उमा भारती चूंकि एक बड़े देश के साथ में आई थी तो सब कुछ चीजें अपने हिसाब से नियंत्रित करना चाहती थी, और यही शायद उनके लिए मुश्किल का कारण बन गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अलग किस्म की पार्टी है, संघ है वहां पर बहुत सारे नेता हैं। तो वो जो कन्फ्लिक्ट चालू हुआ और उस कन्फ्लिक्ट का जो नतीजा ये हुआ कि उमा भारती को एक बहुत ही छोटे से कारण पर इस्तीफा देना पड़ा, वो भी जो कारण था कि तिरंगा फहराया था उन्होंने हुबली के ईदगाह मैदान में, 96-97 का मामला था, और उसमें उनके खिलाफ वारंट आया तो उस वारंट के नाम पर उनका इस्तीफा ले लिया गया। जबकि उसके बाद तो कितने सारे मुख्यमंत्रियों पर तरह तरह के वारंट आए, तरह तरह के मामले हुए, पर किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। तो उमा भारती की जो उस समय की हट धर्मिता थी उसके कारण उनको जाना पड़ा। और आज उमा भारती बिल्कुल जिसको कहें कि बहुत ही मेलोड नेता है, अब उनकी जो हट धर्मिता है उस तरह से नहीं नजर आती है। फिर बीच में बहुत पानी बह गया नर्मदा में और गंगा जी में, उनको गंगा का प्रभारी बनाया गया, पार्टी छोड़ना पड़ी उनको, खुद की पार्टी बनाई, हारी उस पार्टी से, तब तो आके जिसमें कहें कि उमा भारती जी बाकी भाजपा नेताओं की तरह हो गई है।
तो क्या ऐसा लगता है कि वो अभी 2019 में लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी?
जैसा उन्होंने खुद कहा है कि वो आगे चुनाव नहीं लड़ेंगी, पर राजनीति है, राजनीति में आगे क्या होता है नहीं पता, पर इतना जरूर है कि उमा भारती को मध्य प्रदेश की राजनीति से एक बहुत ही सुनियोजित योजना के तहत मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर किया गया, और शायद उस बात को उमा भारती आज भी उस बात से बहुत ज्यादा खुश नहीं है।
तो धन्यवाद तिवारी जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया आपके पुस्तक में, और आशा करते हैं कि लोग उसे पढ़े और जाने।
थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं उमा भारती के शासनकाल की। उमा हो या दिग्विजय, चुनाव के दौरान किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी एक दूसरे को नीचा दिखाने में। शायद यही वजह थी कि चुनाव परिणाम आने के तत्काल बाद विजय हासिल होते ही उमा पहुंची दिग्गी दरबार में सारे गिले शिकवे दूर करने, और फिर ली उन्होंने शपथ मंत्रोच्चार के साथ, और ये मंत्रों का सिलसिला आगे भी जारी रहा।
6 श्यामला हिल्स, प्रवेश के लिए पंडितों का मुहूर्त 26 जनवरी, जहां सबसे पहले मुख्य द्वार पर बनाया गया एक शिव मंदिर। इस दिन गणतंत्र दिवस के साथ साथ बसंत पंचमी पर्व भी था। धार्मिक अनुष्ठान के बाद उमा भारती ने अपने आध्यात्मिक गुरु स्वामी विश्वेश्वर तीर्थ पेजवार मठ के दिशा निर्देशन में विधि विधान से सीएम हाउस में बतौर मुख्यमंत्री पहला कदम रखा। उमा का गृह प्रवेश विवादों के घेरे में आ गया, कारण बना शिव मंदिर निर्माण।
उमा राज के शुरुआती चार दिनों में ही उनकी कैबिनेट का पहला फैसला आया, 2800 दैनिक वेतन भोगियों का नियमितीकरण, गौवंश वध पर पूर्ण प्रतिबंध और भोपाल में नर्मदा जल लाने की योजना।
जिला सरकार की समाप्ति एवं व्यापारियों के फॉर्म 75 के समाधान के लिए 5 प्रमुख निर्णय लिए। फिर दौर शुरू हुआ प्रशासनिक सर्जरी का। सबसे पहले पुलिस महानिदेशक दिनेश चंद्र जुगरान को हटाया और उनके स्थान पर एके दास को पदोन्नत कर महानिदेशक पद से सुशोभित कर दिया गया।
शुरुआती दौर में सब कुछ ठीक नहीं था। दिग्विजय सरकार ने न सिर्फ खजाना खाली कर रखा था बल्कि 28,699 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज भी प्रदेश की सर पर था। इस बात का जोर शोर से ढिंढोरा पीटा गया। अब वो बात अलग है कि वही कर्ज आज बढ़कर 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। खैर, 28,699 करोड़ रुपए का कर्ज, उस पर आने वाले मार्च महीने में बजट की तैयारी। तत्कालीन प्रमुख सचिव की ये चिंता मुख्यमंत्री उमा भारती को नागवार गुजरी। उन्होंने तत्काल मुख्य सचिव आरएस सिरोही को लूप लाइन में डाल दिया।
इन्हीं शुरुआती चार दिनों में उनके भाई स्वामी लोधी उमा के पास चल रही समस्याओं के समाधान के लिए तांत्रिक चंद्रा स्वामी को लेकर सीएम हाउस पहुंचे। जब ये बात लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंची तो वे बहुत नाराज हुए। इन्हीं दिनों शिक्षा मंत्री रमाकांत तिवारी को लकवा मार गया। इलाज के लिए उन्हें सरकारी जहाज से मुंबई ले जाया गया। ऐसे में सरकार की शुरुआत में ही शिक्षा विभाग मंत्री विहीन हो गया। लगभग 2 माह तक आलम यही रहा। बाद में तिवारी को बिना विभाग का मंत्री घोषित कर दिया गया।
भाजपा युग का शुरुआती दौर ही उमा भारती के लिए कष्टदायक रहा, या फिर ये कहें कि उमा का पूरा कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। यहाँ तक कि अच्छी मंशा वाली योजनाएं भी किसी न किसी कारणवश विवादों में आ जाती थी। ऐसा ही संयोग बना जनता दर्शन योजना के साथ।
प्रति मंगलवार आम जनता से मुलाकात की जाती थी, लेकिन इसमें भी गड़बड़ ये हो गई कि चुनावी वादे पूरे होने जा रहे हैं, इस अफवाह के फैलने से हजारों लोग पहुंचने लगे। उन दिनों 10 साल के कांग्रेस काल से त्रस्त लोगों की असीम आशाओं के ज्वर पर सत्ता में पहुंची उमा भारती से लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी। बुजुर्ग महिलाएं बंद हो चुकी अपनी वृद्ध पेंशन, पंचायत नगर पालिका स्तर के छोटे छोटे निजी कामों को लेकर श्यामला हिल्स पर लोग इकट्ठा होने लगे।
ऐसे ही एक दिन चंबल क्षेत्र के दैनिक वेतन भोगियों का एक बहुत बड़ा समूह मुख्यमंत्री निवास पर पहुंच गया तो भारी अव्यवस्था मच गई। महिलाएं बुजुर्ग खासे परेशान हो गए। कुछ रोए तो उमा भारती ने भी उनके साथ अपने टेसू बहा दिए।
इस भीड़ का विपक्ष ने भी खूब फायदा उठाया और उमा दरबार में सुनियोजित तरीके से भीड़ भेजना शुरू कर दिया। हर मंगलवार को 6-6 घंटे लगने वाले जनता दरबार में बढ़ती भीड़ और धक्का मुक्की को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्की फुल्की लाठी चार्ज भी करनी पड़ जाती थी।
जनता दर्शन में ज्यादातर निजी समस्याएं लेकर पहुँचने वालों में से ही एक थे दसमुरा, जिन्होंने रोजगार के लिए पूछा और कहा, मैं क्या करूं? तो मुख्यमंत्री उमा भारती ने दसमुराम को चाय की दुकान डालने की सलाह दे डाली। और जब दसमुराम ने पूछा कहां, तो उन्होंने सीएम हाउस के 6 नंबर गेट पर ही नियम सुरक्षा को ताक पर रखकर गुमटी रखने की इजाजत दे डाली।
अव्यवस्थाओं का आलम यह था कि एक ही दिन में कई हादसे तक हो जाते थे, जिससे परेशान उमा भारती झुंझला जाती थी। इसी झुंझलाहट में एक दिन तो उन्होंने व्यक्ति को तमाचा ही जड़ दिया। हालांकि शाम को जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो पत्रकारों को मुख्यमंत्री निवास बुला लिया। गेट पर ही पत्रकारों के कैमरे, पेन और मोबाइल रखवा लिए गए, जिसके बाद सब अंदर पहुंच गए तो उमा भारती ने अपनी भावनाओं का इजहार किया और कहा,
मैं आज रोना चाहती हूँ।
इसी तरह एक बार दबंग और वयोवृद्ध पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह ने प्रोटोकॉल के साथ कप्तान सिंह सोलंकी के साथ मिलने की मंशा जाहिर की।
गोविंद नारायण सिंह जैसे कद्दावर नेता को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा आमंत्रित करने का आग्रह भी कर लिया गया, लेकिन जब मुलाकात के लिए पहुंचे तो मुख्यमंत्री उमा भारती कार्यालय में थी ही नहीं।
उन दिनों मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास में इस तरह की अव्यवस्थाएं आम थीं, जिसका कारण उमा भारती का तयशुदा कार्यक्रम आखिरी समय में बदलना, मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी निकलने वाले आदेश कब तक कायम रहेंगे ये कहना मुश्किल होता था।
अपेक्षाओं का जन सैलाब, लोगों की असीमित समस्याएं और लगातार नए नए विवादों से परेशान उमा भारती शांति की तलाश में कुछ दिनों के लिए तत्कालीन गृह मंत्री बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री का चार्ज देकर केदारनाथ चली गईं।
उमा का इस तरह अचानक धार्मिक यात्रा पर निकलना कोई नई बात नहीं थी। इसके पहले भी मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण संपन्न होते ही तुरंत रात्रि भोज में अटल जी के निमंत्रण पर दिल्ली पहुंची थी, जिसके बाद वहीं से केश दान करने और आशीर्वाद लेने सीधे तिरुपति चली गईं। फिर गंजे सिर ही उमा भारती ने प्रख्यात पंडित प्रहलाद कुमार पंड्या की पूजा के साथ वल्लभ भवन में प्रवेश किया।
इन्हीं दिनों तबादलों को लेकर ऐसी अफरा तफरी मची कि बैतूल जैसे जिले में सिर्फ 7 दिनों में 4 कलेक्टरों की नियुक्ति व स्थानांतरण हो गए। राज्य का निजाम बदल चुका था, लेकिन पुराने निजाम यानी दिग्गी राजा के लिए अधिकारियों की आस्था का दौर अभी भी जारी था। दिग्गी के चहेते सिपहसालार आए दिन चल रही गतिविधियों पर कुछ न कुछ व्यवधान डालने का कार्य किया करते थे।
अधिकारी एक तीर से 2 निशाने लगाने का मौका नहीं चूकते थे। ऐसा ही कारनामा किया गया उमा के पहले बजट सत्र के दौरान, जब अचानक 1992 में हुए भोपाल उज्जैन में सांप्रदायिक दंगों की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिस पर सदन में विपक्ष ने अच्छा खासा हंगामा किया, जिस पर पक्ष यानी उमा भारती की टीम सकते में आ गई। आखिर किस तरह से बचाव किया जाए?
गुस्साई उमा भारती ने दोनों सचिवों को नोटिस जारी कर दिया। हालांकि इस बार भी अधिकारियों की कोई गलती नहीं थी। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत रिपोर्ट को 6 माह में विधानसभा पटल पर रखा जाना था।
जमाना परायों और विरोधियों से परेशान होता है। उमा दीदी परायों से ज्यादा अपने ही भाई से परेशान थी। भाई स्वामी लोधी हर दिन अखबार में छाए रहते थे, कभी कांग्रेस शासन की तारीफों के पुल बांधते तो कभी उमा भारती सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार साबित करने में लग जाते। यहाँ तक कि स्वामी लोधी राघोगढ़ दिग्विजय के किले में प्रवचन करने पहुंच जाते। आखिरकार स्वामी लोधी को नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया।
उमा के साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से होने के कारण ज्यादातर उनके परिवार वाले शहरी और आधुनिक छल कपट नहीं जानते थे। इन्हीं रिश्तेदारों को होशियार सरकारी तंत्र और स्वार्थी लोगों ने छोटे मोटे लालच देकर ट्रांसफर पोस्टिंग की रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश करवाना शुरू कर दिया।
जब बदनामी ज्यादा होने लगी तब मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने एक परिपत्र निकाला, यदि कोई नागरिक अपने आप को मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताता है तो उसकी पूरी जानकारी एकत्रित करके मुख्यमंत्री सचिवालय को जारी की जाए।
लोकसभा चुनाव होते ही उमा भारती ने सरकार चलाने के लिए पंचजा यानी जन, जल, जंगल, जमीन और जानवर के आधार पर विकास करने की नीति बनाई। इसी नीति का अनुमोदन कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया और कैबिनेट की बैठकें शुरू हुई महेश्वर से।
दरअसल पंचजा में पर्यावरण और उसके संरक्षण की भी बात की गई थी, जो कि आज की जरूरत भी है, लेकिन इस अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर मजाक उड़ाया गया। उमा जी का मजाक के साथ चोली दामन का साथ रहा।
जैसे एक रोज मुख्यमंत्री निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उनका प्रिय कुत्ता गोलू प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उनकी बगल में बैठ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोककर उमा ने गोलू का परिचय सभी पत्रकारों से करवाया और कहा, देखो गोलू, तुम्हारे कितने मामा एक साथ आए हैं।
उमा भारती की एक और बड़ी खासियत है, वे अपने समर्थकों को खूब उपकृत करती हैं। उन्हें जब मौका मिलता है दोनों हाथों से उलीचती हैं। सत्ता पे काबिज होने के लगभग 6 माह के अंतराल में ही शिवशंकर पटेरिया, अरविंद श्रीवास्तव वगैरह वगैरह को मंत्री दर्जा के समकक्ष मंडल व अध्यक्ष की नियुक्ति के फैक्स के जरिए आदेश दे दिए गए।
ये आदेश पाकर प्रशासन में अफरा तफरी सी मच गई, क्योंकि जिन विभागों में वे अध्यक्ष नियुक्त करना चाहती थी वहाँ इस तरह के पद पर नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था, जैसे मंडी बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कृषि मंत्री होता है। वाल्मीकि, दुग्ध संघ और मत्स्य संघ में सरकार सीधे अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर सकती है। इसी तरह प्रदूषण विभाग में तकनीकी योग्यता के अनुसार विज्ञापन के जरिए ही अध्यक्ष का पद भरा जा सकता है।
लेकिन उमा भारती का मुख्यमंत्री के रूप में इतना भय था कि नौकर शाह सपने में भी उनके आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते थे। मुख्यमंत्री उमा भारती के निर्देश थे 1 बजे तक आदेश निकाल दिए जाएं। आनन फानन में आदेश तो निकले लेकिन विभागों को बदल दिया गया।
पूरे 258 दिनों बाद 21 अगस्त 2004 को कर्नाटक से तिरंगा मामले में उमा भारती का गिरफ्तारी वारंट आ गया। इस कारण उमा भारती को इस्तीफा देने का निर्णय लेना पड़ा। हालांकि इस इस्तीफे का पार्टी अध्यक्ष कैलाश जोशी ने कड़ा विरोध किया।
इस इस्तीफे के बाद उमा अपने राजनीतिक कद को राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद कर रही थी। राजनीतिक पंडितों का तो यहाँ तक कहना है कि उमा भारती को उम्मीद थी कि इस इस्तीफे के बाद वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार बन जाएंगी।
उमा भारती के साथ सरकार के 24 मंत्रियों ने भी इस्तीफे दे दिए। ये सारे के सारे मंत्रियों ने उमा भारती से भावनात्मक लगाव के कारण त्याग पत्र दिया। हालांकि भाजपा के तत्कालीन पार्टी महासचिव अरुण जेटली के हस्तक्षेप के बाद सभी मंत्रियों ने अपने इस्तीफे वापस ले लिए। लेकिन बड़ा सवाल बना, उमा के इस्तीफे के बाद गद्दी पर अब कौन?
उमा के सामने अपनी गद्दी सौंपने के लिए कुछ नाम मौजूद थे, जिनमें बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह, सुमित्रा महाजन, विक्रम वर्मा, कैलाश जोशी के नाम शामिल थे। इनमें से सबसे बुजुर्ग और पिछड़े वर्ग के 74 साल के बाबूलाल गौर को उमा ने चुना। तब उनसे सीएम हाउस के मंदिर में 21 देवी देवताओं के सामने गंगा जल उठाकर शपथ दिलाई। शपथ इस बात की थी कि जब उमा भारती कहेंगी तब गौर इस्तीफा दे देंगे। गौर करने वाली बात यह है कि ये वही बाबूलाल गौर थे जिन्हें सिर्फ 1 साल पहले उमा भारती टिकट देने के भी खिलाफ थीं।
खैर, बीजेपी के तत्कालीन महासचिव अरुण जेटली की उपस्थिति में बाबूलाल गौर को मध्य प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। गौर प्रकाश चंद सेठी के बाद दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री थे जो बड़े शहर से आए थे।
इसके बाद 24 अगस्त 2004 को उमा भारती गोवा एक्सप्रेस से कर्नाटक के लिए रवाना हो गईं, जिसके साथ ही मध्य प्रदेश ब्यूरोक्रेसी ने राहत की सांस ली। अब तक अधिकारियों की मनमाने रवैये पर उमा भारती के खौफ की लगाम जो कसी हुई थी।
लेकिन इसके बाद तिरंगा मामले में राष्ट्रीय स्तर पर उमा भारती की पहचान मजबूत होने लगी थी, लेकिन अंदरूनी खींचतान के चलते तिरंगा यात्रा का समापन होते होते उमा भारती एक समय तो हालातों के चलते खलनायक तक करार दी गई। यहाँ तक कि परेशान होकर उमा भारती ने मथुरा पहुंचकर राजनीति से ही संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उन दिनों अखबार इसी तरह की खबरों से पटे रहते थे।
तिरंगा यात्रा का समापन उमा भारती के लिए पार्टी में मुश्किलों की शुरुआत थी। इसके बाद पूरे 6 सालों तक अपनों से लड़ती रहीं। आखिरकार आरएसएस के हस्तक्षेप के बाद ही इस तेज तर्रार साध्वी नेत्री का पुनर्वास हो सका।
इसके बाद मध्य प्रदेश में शुरू हुआ 17वें मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का राजकाज, जिसकी चर्चा करेंगे हम अगली बार। अगली कड़ी में हम फिर होंगे हाजिर। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति।
नमस्कार।